दिन भर 17 मई दिन शुक्रवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन पत्रकारों से रूबरू हुए पीएम मोदी, पर जवाब दिए अमित शाह ने।
मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है।
राहुल गांधी ने भी ली पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुटकी।
अच्छा, ये मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर इज अकंपनिंग मिस्टर अमित शाह इन अ प्रेस ब्रीफिंग, अनप्रेसिडेंटेड।
गोडसे पर बयान के लिए साध्वी प्रज्ञा समेत दो और नेताओं को मिला नोटिस। और आज विवेचना में झलक उस मैच की जिसमें भारत ने जीता था पहला क्रिकेट विश्व कप।
हम तो समझे कि भाई ये तो बस ओपनिंग स्टैंड में ही खा जाएंगे, हमें विवेन रिचर्ड्स की तो बारी ही नहीं आएगी।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। हालांकि पत्रकारों के सवाल के जवाब अमित शाह ने ही दिए। वहीं जिस समय मोदी और शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। 19 मई को अंतिम चरण का मतदान होना है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हांगकांग विधानसभा के चीन के मेन लैंड पर प्रत्यर्पण को मंजूरी देने की योजना पर चिंता जताई है। माइक पोम्पियो ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक नेता मार्टिन ली से वॉशिंगटन में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस मंजूरी से हांगकांग के क्षेत्रीय नियम का उल्लंघन होने का खतरा है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता लू कैंग ने इस आलोचना को नकार दिया है। उन्होंने कहा है, हमारा मानना है कि अमेरिका अगर कुछ करना ही चाहता है तो वो अपने देश में मौजूद हांगकांग के विदेश अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा का ख्याल रखें। वो अगर हांगकांग के भीतरी मामलों में दखल देंगे तो ये गलत होगा, इसका अमेरिका को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कैंग के शब्द। ताइवान एशिया का पहला देश बन गया है जहां समान सेक्स में होने वाली शादियों को कानूनी मान्यता दे दी गई है। ताइवान की संसद में आज इस कानून को पारित कर दिया गया। साल 2017 में देश की सर्वोच्च अदालत ने समान सेक्स में शादी को देश के संविधान के खिलाफ नहीं माना था। इसी आदेश के आधार पर यह कानून बनाया गया है। जब यह कानून संसद के भीतर पारित करवाया जा रहा था, उस समय संसद के बाहर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मैरिज इक्वेलिटी कोएलिशन नामक संगठन की मुख्य संयोजक जेनिफर लू ने कहा कि अभी भी इस मुद्दे पर और कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा,
Next week, there will be official the day, May 24th, same-sex couples can get married in Taiwan.
अगले सप्ताह 24 मई वह आधिकारिक तारीख होगी जब ताइवान में समान सेक्स के जोड़े शादी कर सकेंगे। हालांकि अभी भी पूरे अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। हम अभी भी बच्चा गोद लेने का अधिकार, विदेशी और ताइवानी निवासी के बीच शादी और शिक्षा में लिंग समानता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये थे मैरिज इक्वेलिटी कोएलिशन की मुख्य संयोजक जेनिफर लू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में कैद में रखे गए बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आने पर अब संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। ब्रिटेन के जरिए खुद एक स्वतंत्र जांच करवाई गई जिसमें पता चला कि 2009 से 2017 के बीच कैदी बनाए गए बच्चों में से 1000 से अधिक बच्चों का यौन शोषण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इनमें से कुछ ही मामले जांच की दृष्टि से देखे गए। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि उन्होंने बांग्लादेश में 2.5 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों का नामांकन किया है। इन रोहिंग्या मुसलमानों को पहली बार पहचान पत्र प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि वह पहचान पत्र इन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपने घरों में वापस जाने के लिए फायदेमंद साबित होगा। म्यांमार साल 2014 में अपने देश की जनगणना से रोहिंग्या मुसलमानों की गिनती करने से इनकार कर चुका है। ब्रिटेन की दो प्रमुख पार्टियों के बीच ब्रेग्जिट के मुद्दे पर चल रही बैठक बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही समाप्त हो गई। मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी ने 6 हफ्तों तक चली बातचीत के बाद खुद को इससे अलग कर लिया। बीबीसी समाचार।
सत्रह मई शुक्रवार के दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट बीबीसी हिंदी पर भी लाइव सुन सकते हैं। भारत में लगभग 2 महीने पहले शुरू हुआ चुनाव कार्यक्रम अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो गया। आखिरी दिन की सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रचार थमने के थोड़ी ही देर पहले लगभग एक ही समय दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ठीक उसी वक्त कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी आलोचना ये होती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये बात राहुल गांधी तक भी पहुंची और उन्होंने इस पर ये चुटकी ली।
प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अकंपनिंग मिस्टर अमित शाह इन अ प्रेस ब्रीफिंग। अनप्रेसिडेंटेड।
तो राहुल गांधी जो बता रहे थे कि अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें भी मोदी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए, बस अपनी बात सुनाई। जवाब अमित शाह ने दिए, हालांकि एक पत्रकार ने फिर भी मोदी से ही जवाब मांगा और जवाब ये मिला।
हमको डिसिप्लिन सोचना है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं।
तो अध्यक्ष अमित शाह ही सब कुछ थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर भी एक पत्रकार ने फिर से मोदी से ही सवाल किया तो अमित शाह ने ये कहा,
मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है।
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भी सवाल पूछे गए, जिस पर अमित शाह ने पहले ही न केवल उनको बल्कि 2 और नेताओं केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े और कर्नाटक से भाजपा सांसद नलिन कटील को नोटिस भेज दिया था। वही बात अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और आज दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर की निंदा की। और कुल मिलाकर ये मामला छाया रहा, बल्कि कल से छाया हुआ है, और क्या रहा ये पूरा मामला ये बता रही हैं बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे।
आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के पक्ष में बयान देने वाले अपने पार्टी के 3 नेताओं से भाजपा को दूर बताया। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर, अनंत कुमार हेगड़े और नलिन कुमार कतील पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें 10 दिनों के भीतर अपनी सफाई भाजपा की डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंपने के आदेश दिए। दरअसल बीती शाम एक विवादास्पद बयान में महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा भुगतने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में आ गईं। सुनिए प्रज्ञा का यह विवादास्पद बयान।
नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा।
इसके तुरंत बाद कर्नाटक से भाजपा सांसद नलिन कुमार कतील ने एक ट्वीट करते हुए कहा, गोडसे ने 1 को मारा, कसाब ने 72 को और राजीव गांधी ने 1700 को, अब आप तय करिए ज्यादा क्रूर कौन था। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि 7 दशकों बाद दोषी बताए गए लोगों की सुनवाई हो रही है। हालांकि अब यह सारे ट्वीट ट्विटर से हटा लिए गए हैं और तीनों नेताओं ने अपने बयानों के लिए ट्विटर पर माफी भी मांग ली है, लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस विवाद पर कार्रवाई करते हुए ट्वीट में लिखा, विगत 2 दिनों में श्री अनंत कुमार हेगड़े, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और श्री नलिन कतील के जो बयान आए हैं वो उनके निजी बयान हैं। उन बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इन लोगों ने अपने बयान वापस लिए हैं और माफी भी मांगी है, फिर भी सार्वजनिक जीवन तथा भारतीय जनता पार्टी की गरिमा और विचारधारा के विपरीत इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लेकर तीनों बयानों को अनुशासन समिति को भेजने का निर्णय किया है। अनुशासन समिति तीनों नेताओं से जवाब मांगकर उसकी एक रिपोर्ट 10 दिन के अंदर पार्टी को दे, इस तरह की सूचना दी गई है। साथ ही भाजपा के YouTube चैनल पर जारी किए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वो प्रज्ञा ठाकुर को गोडसे पर दिए गए इस बयान के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई, चाहे इस प्रकार के जो बयान दिए गए, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं करता।
अंतिम चरण के चुनाव से मात्र 2 दिन पहले शुरू हुआ यह विवाद सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है और साफ है कि भाजपा इस मामले की वजह से किसी भी तरह का चुनावी नुकसान उठाने से बचने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रियंका दुबे, BBC दिल्ली।
और यहाँ बता दें कि कल इंडिया बोल में भी नाथूराम गोडसे को लेकर छिड़ी बहस की चर्चा होगी।
BBC इंडिया बोल।
बार बार नाथूराम गोडसे की तारीफ क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, पहले BJP सांसद साक्षी महाराज और अब प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त बताया। महात्मा गांधी की हत्या के 70 बरस बाद भी संघ परिवार में गोडसे की विरासत को लेकर असमंजस क्यों? इस बार BBC इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800 11 7000 और 1800 102 7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
ओडिशा ने अनुमान लगाया है कि तूफान फणी से राज्य को 11,900 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सूबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से 5 लाख घर बनाए जाने की मांग रखी है। 3 मई को तटीय राज्य ओडिशा में 200 किलोमीटर से भी तेज गति का तूफान आया था, जिससे अब तक कम से कम 64 लोगों की जान जा चुकी है। तूफान के बाद लोग एक बार फिर से अपने जीवन को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने पुरी में पेंठो कोटा मोहल्ले का दौरा किया जहां मछुआरे रहते हैं। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
उसका नाम सहदेव है, सहदेव प्रधान, पेंठो कोटा के सबसे तजुर्बेकार मछुआरों में से एक, लेकिन आजकल वो सुबह सुबह मजदूरी की तलाश में निकल पड़ते हैं।
काम जाता है,
मैं मजदूरी का काम करता हूँ, उसमें कभी कभी एक दिन में 300 रुपए की कमाई हो जाती है, उसी से खाना आता है।
वो भी खाना बनाए बचेगा या भगवान है, रहेगा खाएगा करेगा।
पेंठो कोटा मोहल्ले के साइक्लोन सेंटर में पत्नी लक्ष्मी के साथ मौजूद सहदेव कभी झुंझलाहट और कभी दुख भरी आवाज में अपनी दास्तां बयां करते हैं। सहदेव के घर के पास मौजूद हिंद महासागर की लहरों का शोर वहां से साफ सुनाई देता है। इन्हीं लहरों ने 200 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से चल रही हवा के साथ मिलकर उस दिन पेंठो कोटा और पुरी के दूसरे इलाकों और उड़ीसा के 13 अन्य जिलों में भारी तबाही मचाई थी। गणेश से हमारी मुलाकात मोहल्ले की एक गली में होती है।
यहाँ करीब 4500 घर हैं और कुल 20,000 लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ करीब 12,000 नावें होंगी, जिसमें से 2,000 पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं।
12,000 पार चलु पूरा 2,000 बोट पूरा लॉस्ट हो जाए।
तटीय इलाके में बसे उड़ीसा में कम से कम 6 लाख परिवार मछली पकड़ने के काम में लगे हैं और बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त होने वाले नावों की कुल तादाद अनुमानतः 10,000 से अधिक है। हालांकि राज्य सरकार ने अप्रैल 15 से 2 माह के लिए, जो मछलियों के अंडे देने का वक्त होता है, बड़े फिशिंग ट्रॉलरों के मछली पकड़ने पर रोक लगा रखी थी, जिससे बहुत सारे मछुआरों की जान बच तो गई, लेकिन इसी वजह से बहुत सारे मछुआरे बाहर गए हुए थे और उनकी नावें पीछे में क्षतिग्रस्त हो गई। अप्पा राव कहते हैं,
ये मसो फिशिंग नहीं बांधो,
अब हम कम से कम 2 महीने तक मछली नहीं पकड़ पाएंगे, लोगों के पास तब तक खाने के लिए भी ना बचा होगा।
गौरव बेंगला आम खाएगा किसी नहीं।
मैंने लक्ष्मी से पूछा कि वो अपना घर कब तक बनाने की उम्मीद रखती हैं, तो वो थोड़ा झुंझलाई हुई आवाज में कहती हैं,
अब हम यहीं रह रहे हैं, घर बनाने के लिए पैसा कहाँ है, अनाज खरीदने के लिए तो पैसा नहीं है, घर कहाँ से बनाएंगे।
नाव को बनाने में भी खासा वक्त लगेगा, गणेश कहते हैं,
ना लोन करूं।
नाव के लिए सरकार हमें कर्ज नहीं देती, हम औरों से उधार लेकर काम करते हैं, बैंक भी हमें कर्ज नहीं देता।
बैंक हमको लोन दो, लोन दो।
और बिजली भी तो नहीं है, जिसे बहाल होने में कहा जा रहा है कम से कम महीने भर का वक्त लगेगा। राज्य सरकार ने हाल में क्षतिग्रस्त हुए नावों के लिए तकरीबन 10,000 और जाल के लिए 2600 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन मछुआरों का कहना है कि वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। फैसल मोहम्मद अली, BBC पूरी उड़ीसा।
और अब आज की विवेचना। 30 मई से इंग्लैंड में 12वीं विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जहां भारत खिताब का प्रबल दावेदार है। भारत ने पहली बार 1983 में विश्व कप जीता था जब उन्होंने फाइनल में उस समय की विश्व की नंबर एक टीम वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर दुनिया को चकित कर दिया था। उस मैच के रोमांचक क्षणों का सिलसिलेवार ब्यौरा दे रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
जब 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के मैदान के बीचों बीच कपिल देव निखंज और मदन लाल के बीच मंत्रणा हुई तो उसका असर न सिर्फ विश्व कप के फाइनल पर पड़ा बल्कि उसने हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी। विव रिचर्ड्स ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए आनन फानन में 33 के स्कोर पर पहुंच गए। वो मदन लाल की गेंदों पर 3 चौके लगा चुके थे इसलिए कपिल देव किसी और को ओवर देने के बारे में सोच रहे थे। तभी मदन लाल ने उनसे 1 ओवर और करने देने के लिए कहा। कुछ हलकों में ये भी कहा गया कि मदन लाल ने उनसे गेंद छीनी। मदन लाल याद करते हैं,
ये बात सही है कि कपिल देव से मैंने गेंद ली थी, छीनी नहीं थी। कैप्टन के हाथ से गेंद तो कोई छीन नहीं सकता, पर ये था कि मेरे को 3 ओवर में 20 के रन पड़ गए थे तो कोई भी कैप्टन उसके सोचेगा कि किसी और को बॉलिंग कराई जाए। मैंने उसको एक ही बात कहा कि मैंने 3 ओवर किए हैं, 1 ओवर और मैं गर्म करूँ। वो सोच ही रहा था, बाय द टाइम वो सोच रहा था तो मैंने बॉल लिया उनसे। मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ, तो मैंने हिट किया जरा ग्राउंड को, वो थोड़ा सा गेंद तेज किया, उन्होंने मिस टाइम किया। बाकी देखिए कपिल देव जरूर भागे 20-25 पीछे भागे हैं, पर ये कपिल देव जैसे खिलाड़ी जो इतने दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं और उनके लिए ये कैच मुमकिन था, तो यही एक हिस्ट्री है।
June 25, 1983 को शनिवार था, लॉर्ड्स के मैदान पर बादल छाए हुए थे। जैसे ही क्लाइव लॉयड और कपिल देव मैदान पर टॉस करने आए, सूरज ने बादल को पीछे ढकेला और दर्शकों ने खुशी से तालियां बजाईं। जाने माने पत्रकार और भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर हाल ही में छपी किताब द 9 वेव्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट लिखने वाले मिहिर बोस याद करते हैं,
हम जब लॉर्ड्स के अंदर जा रहे थे, बुकीज इंग्लैंड में बुकीज ऑड्स दे रहे थे कि इंडिया की चांसेस 50-1 100-1 है। कपल ऑफ इंडियन सपोर्टर्स एक बैनर किया था जो इंडिया को फेवरेट किया मजाक से। लॉर्ड्स के अंदर में बहुत से वेस्ट इंडियन सपोर्टर्स थे, इंडियन सपोर्टर्स उतने नहीं थे, पहले से ही आवाज कर रहे हैं कि हम तीसरा बार वर्ल्ड कप जीतेंगे। और प्रेस बॉक्स में बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट नहीं थे, मैं तो संडे टाइम्स के लिए काम कर रहा था और सब इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट बोल रहे थे क्या बात हुआ, ये इंडिया फाइनल में है, ये तो खराब फाइनल होगा, अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल में होता तो वेस्ट इंडीज शायद जीते, बट कुछ मैच होता ये तो मैच भी नहीं होगा। इंडियन इनिंग्स में इंडिया अच्छे बैटिंग बहुत नहीं किए, सब लोग को लगा ये एकदम बेकार है। और जब वेस्ट इंडियन बैटिंग शुरू किया, संदीप पाटिल गावस्कर को मराठी में बोला, हाँ ठीक है भाई हम लोग को टाइम होगा, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जाके हम शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे तो इतना खराब लग रहा था कि जब वेस्ट इंडीज बैटिंग शुरू किया, मुझे सब इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट बात सुन के इतना दुख हुआ था कि मैं प्रेस बॉक्स छोड़ के जरा लॉर्ड्स के घूमने शुरू किया।
उस दिन कपिल टॉस हारे और लॉयड ने भारत से पहले बैटिंग करने के लिए कहा। एंडी रॉबर्ट्स ने बिग बर्ड जॉयल गार्नर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की। रॉबर्ट्स ने भारत को पहला झटका दिया जब 2 के स्कोर पर दूजों ने गावस्कर को कैच कर लिया।
एंडी रॉबर्ट्स, वेल डन, दैट्स ब्यूटीफुली बॉल्ड। गावस्कर हैज गॉन द फर्स्ट विकेट डाउन एंड एंडी रॉबर्ट्स इन द मिडल ऑफ दिस ग्रेट स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम हिमसेल्फ एंड जो गार्नर हैज टेकन द फर्स्ट इंडियन विकेट।
गावस्कर की जगह आए मोहिंदर अमरनाथ ने एक छोर संभाल लिया, दूसरे छोर पर श्रीकांत तूफानी मोड में थे। उन्होंने पहले गार्नर को 4 रनों के लिए स्लैश किया, फिर उन्होंने रॉबर्ट्स की गेंद को मिड विकेट पर बाउंड्री के बाहर किया और थोड़ी देर बाद उन्हें 6 रनों के लिए हुक कर दिया। मैंने श्रीकांत से पूछा कि जब आप बैटिंग करने गए थे तो क्या सोच कर गए थे।
जाके उधर मारना चाहिए, एसी है मेरा, जिससे जाके देख के खेल लो, तुम्हारा गेम खेल लो, यही मेरा एटीट्यूड है, जाके मारेगा तो मारो, नहीं मारो तो जल्दी आंसर आओ।
श्रीकांत बैटिंग करते हुए काफी रिस्क ले रहे थे और उधर लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी पर बैठे हुए भारतीय खिलाड़ियों का दिल मुंह की तरफ आ रहा था। लॉयड ने मार्शल को लगाया और आते ही उन्होंने श्रीकांत को पवेलियन भेजा, लेकिन उनके बनाए गए 38 रन दोनों टीमों का सर्वाधिक स्कोर था। मोहिंदर और यशपाल शर्मा ने बहुत धीमे धीमे 31 रन जोड़े, लेकिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाज एक कंप्यूटराइज रॉकेट की तरह बार बार आक्रमण करते रहे। रॉबर्ट्स जाते तो मार्शल आ जाते, मार्शल जाते तो होल्डिंग गेंदबाजी संभाल लेते। यशपाल और मोहिंदर दोनों जल्दी जल्दी आउट हुए। भारत के 6 विकेट मात्र 111 रनों पर गिर गए। लॉर्ड्स में मैच देख रहे भारतीय मूल के दर्शकों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। उधर भारत में क्रिकेट प्रेमी झल्लाकर अपना रेडियो और टेलीविजन सेट बंद कर रहे थे, लेकिन भारत के आखिरी 4 विकेटों ने करो या मरो की भावना को चरितार्थ करते हुए 72 रन जोड़े। 11 नंबर पर खेलने आए बलविंदर संधु ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। मार्शल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बाउंसर फेंका जो उनके हेलमेट से टकराया। सैयद किरमानी याद करते हैं।
मेरी और बलविंदर सिंह संधु की पार्टनरशिप जब जम रही थी, पहली गेंद जो मालकम मार्शल ने इनको डाली वो बाउंसर डाल दिए। बल्लू को जब जैसे ही हेलमेट पे बॉल लगा, दिन में तारे नजर आए उनको, तो मैं भागा उनकी तरफ अंपायर का परमिशन लेके पूछने कि भाई तुम ठीक हो क्या हो, तो वो हेलमेट को अपने हाथ से लगड़ रहे थे। तो मैं बोला यार बल्लू तुम हेलमेट को क्यों लगड़ रहे हो यार, हेलमेट को मार लगी है या तुमको अंदर मार लगी है, बोल के उन्होंने हेलमेट को निकाल के अपने सिर को लगाने लगे। तो वहाँ पे मालकम मार्शल को डिकी बर्ड ने बहुत ही गुस्से में आके उनको कैसे डालते हो तुम लास्ट बैट्समैन को बाउंसर, वो भी वर्ल्ड कप के दौरान जब उसको बैट पकड़ने भी नहीं आती, ये वो बोल के बहुत ही झाड़ दिया उसको। गो एंड से सॉरी टू बल्लू बोल के उसने कहा, तो वो आया बेचारा आके आई एम सॉरी मॉन, नो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इतने सीरियस मैटर में यहाँ पे बल्लू का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो अप्रिशिएट करना है। उसने जवाब क्या दिया जब इन्हें सॉरी कहा, मालकम यू थिंक माय ब्रेन इज ऑन टॉप हियर, नो मान इट इज इन माय नीज बोल के उसने जवाब दिया मालकम को।
भारतीय टीम 183 रन बनाकर आउट हुई और वेस्ट इंडीज की टीम इस तरह पवेलियन की तरफ भागी मानो विश्व कप उनकी झोली में हो। मैंने सैयद किरमानी से पूछा कि जब आप फील्डिंग करने उतरे तो आप क्या सोच रहे थे कि मैच किस तरफ जाएगा?
हम तो समझे कि भाई ये तो बस ओपनिंग स्टैंड में ही खा जाएंगे हमें, विवियन रिचर्ड्स की तो बारी ही नहीं आएगी, मगर अपना हौसला हारेंगे नहीं ना पीछे हटेंगे, अपना सारे के सारे विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड खेलेंगे।
वेस्ट इंडीज की ओर से हेन्स और ग्रीनिच बैटिंग करने के लिए उतरे। चौथे ओवर में बलविंदर संधू की एक गेंद पर ग्रीनिच ने ये सोचकर अपना बल्ला ऊपर उठा लिया कि गेंद बाहर जा रही है, गेंद सहसा अंदर आई और ग्रीनिच का ऑफ स्टंप ले उड़ी। रिचर्ड के आउट होने की कहानी आप सुन ही चुके हैं। अब भारतीय खिलाड़ियों के कदमों में तेजी आ गई थी। लॉयड ने बिनी को ड्राइव किया और शॉट में डॉन पर खड़े कपिल देव के हाथों में करारा शॉट आकर चिपक गया। गोम्स और बैकस के आउट होने के बाद दूजो और मार्शल जम गए और उन्होंने 7वें विकेट के लिए 43 रन जोड़े। मोहिंदर ने दूजो को आउट किया। वेस्ट इंडीज की अंतिम जोड़ी गार्नर और होल्डिंग स्कोर को 140 तक ले गई, लेकिन तभी मोहिंदर अमरनाथ ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर चारों तरफ दर्शक ही दर्शक थे। मैंने कीर्ति आजाद से पूछा कि वो दृश्य याद कीजिए जब मोहिंदर ने होल्डिंग को आउट किया था।
कि आप मुझे विश्व कप की बात कर रहे हैं, वो दृश्य बिल्कुल मेरे सामने आ गया है। मेरे शरीर में सिरन दौड़ रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा अनुभव था जो कि मैं शायद जीवन में कभी भी नहीं पा सकूंगा। एक कोई भी व्यक्ति किसी भी खेल में, किसी भी अपने प्रोफेशन में रहे, कोई भी व्यवसाय करता हो, वो चाहता है कि उसके शिखर पर पहुंचे। और वो दृश्य सामने जब अपने भारतीय प्रवासी तिरंगा झंडा लेकर सामने खड़े हों, तो एक ऐसा अनुभव है जो शायद रेहान मैं आपको बता नहीं सकता, महसूस जरूर कर सकता हूं।
जब ये जश्न मन रहा था तभी मशहूर अभिनेता शशि कपूर वहां पहुंच गए। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं।
जब हम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले तो वहां साउथ हॉल से आए कुछ पंजाबी नाचने लगे। फिर किसी ने आकर मुझसे कहा कि शशि कपूर बाहर खड़े हैं और अंदर आना चाहते हैं। मैं टीम के दो सदस्यों के साथ उन्हें लेने बाहर गया। उस दिन हमने लॉर्ड्स के सारे कायदे कानून तोड़ डाले। लॉर्ड्स के मुख्य स्वागत कक्ष में कोई भी व्यक्ति बिना कोट टाई पहने नहीं घुस सकता। हमने शशि कपूर के लिए टाई तो ढूंढ ली, लेकिन वो इतने मोटे हो चुके थे कि हम में से किसी का कोट उन्हें फिट नहीं आया। लेकिन शशि कपूर स्मार्ट शख्स थे, उन्होंने स्टार की तरह कोट को अपने कंधे पर डाला और टाई बांधे हुए अंदर घुस आए। फिर उन्होंने हम सब के साथ जश्न मनाया।
लॉर्ड्स की बालकनी पर कपिल ने शैंपेन की बोतल खोली और नीचे नाच रहे दर्शकों को सराबोर कर दिया। मजे की बात यह है कि कपिल ये शैंपेन की बोतल वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम से लाए थे, क्योंकि भारत ने तो जीत की उम्मीद ही नहीं की थी, इसलिए उनके ड्रेसिंग रूम में शैंपेन की एक भी बोतल नहीं थी।
इंडियन ड्रेसिंग रूम में शैंपेन नहीं था, या तो जीतने वाला नहीं था, तो वेस्ट इंडियन ड्रेसिंग रूम में शैंपेन था। कपिल देव वेस्ट इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए क्लाइव लॉर्ड वेस्ट इंडियन कैप्टन से बात करने के लिए, तो वहाँ सब देखा, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स बहुत दुखी थे, तो उन्होंने क्लाइव लॉर्ड से पूछा कि मैं देख रहा हूँ शैंपेन बॉटल है, मैं ले सकता हूँ? क्लाइव लॉर्ड कहा ले जाओ। तो इंडिया वेस्ट इंडीज को हराए और उनकी शैंपेन भी पिए।
मैंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूगरपुर से पूछा कि उस समय भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था।
बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे कि कोई शादी का माहौल हो, लेकिन शादी में एक दूल्हा होता है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में उस दिन 11 दूल्हे थे। मैं ये भी नहीं भूल सकता कि वेस्ट इंडीज की सारी टीम आई, केवल उनके 4 फास्ट बॉलर्स नहीं आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें कैसे खुशी मना सकते हैं जब उन्होंने तो उनका सब काम कर दिया था। और इतने बड़े बल्लेबाज होने के बावजूद भी वेस्ट इंडीज 60 ओवर में 184 रन नहीं बना पाई।
जब भारतीय टीम मुंबई पहुंची तो मूसलाधार बारिश के बीच 50,000 लोगों ने वानखेड़े स्टेडियम में उसका स्वागत किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हैदराबाद हाउस में टीम का स्वागत किया। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं।
इंदिरा गांधी के मिलने से पहले गावस्कर ने श्रीकांत से कहा, देखो तुम्हारी आंख मारने और नाक चढ़ाने की बुरी आदत है, इंदिरा जी के सामने अपने पर काबू रखना और ढंग से पेश आना। श्रीकांत ने कहा ठीक है। जब वो गावस्कर से बात कर रही थी तो श्रीकांत इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंख और नाक कोई हरकत न करे। तभी मैंने देखा कि श्रीकांत की तरह इंदिरा गांधी की भी आंख झपकाने की आदत है। जब वो श्रीकांत से मिलने पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखें झपकाई। तब तक श्रीकांत अपने ऊपर सारा नियंत्रण खो चुके थे, उनकी भी आंख झपकी और उन्होंने भी अपनी नाक चढ़ानी शुरू कर दी। हम सब लोग ये सोचकर परेशान हो गए कि कहीं इंदिरा गांधी ये न समझ लें कि श्रीकांत उनकी नकल कर रहे हैं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
1983 के विश्व कप क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के विश्व विजेता बनने की कहानी। और अब सभा समापन से पहले एक बार फिर नजर सुर्खियों पर भूमिका राय के साथ।
बीबीसी समाचार। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हांगकांग विधानसभा के चीन के मेनलैंड पर प्रत्यर्पण को मंजूरी देने की योजना पर चिंता जताई है। ताइवान एशिया का पहला देश बन गया है जहाँ समान सेक्स में होने वाली शादी को कानूनी मान्यता दे दी गई है। ताइवान की संसद में आज इस कानून को पारित कर दिया गया। ब्रिटेन की कैद में रखे गए बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आने पर अब संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि उन्होंने बांग्लादेश में 2.5 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों का नामांकन किया है। इन रोहिंग्या मुसलमानों को पहली बार पहचान पत्र प्राप्त हुआ है। पोप फ्रांसिस ने ब्राजील के बिशप विल्सन डायस डी ओलिवेरिया के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। वेटिकन 3 प्रांतों में यौन शोषण भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें से एक लिमियेरा है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। आपसे अगली मुलाकात होगी भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।